जैसे पानी है। अब पानी ही, पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे की ओर बहना। बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, जैसे एक किसान अपने खेत में पानी ले जाना चाहता है तो वह क्या करता है, उसे पानी को खींच के तो लाना नहीं पड़ता, बीच में जो बाधक तत्व है, बीच में जो मेड़ है, उस मेड़ को काट देता है। और जो ही उसने मेड़ को काट दिया, यह जल अपने स्वभाव से बह करके उसके खेत में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह कहा गया कि हम केवल बाधक तत्वों को दूर करते हैं, और बाधक तत्वों को दूर करने से यह जो प्रकृति का प्रवाह अपने आप बहता है, जिसे कहेंगे यह प्रकृति की आपूरण क्रिया कि निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में। तो इसलिए यह कहा कि यह जो अमीबा के भीतर में पूर्णता छिपी है, यह पूर्णता अपने को प्रकट करना चाहती है। बाधक तत्व आते हैं, बाधक तत्व हट गए तो वह पूर्णता पुनः मानो अधिक मात्रा में विकसित हो गई, और अगर बाधक तत्वों को दूर किया तो अधिक मात्रा में विकसित हो गई। इस योनि में आकर के पूर्णता अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाती, इसलिए उच्चतर योनि धारण करती है, उसमें वह अपने आप को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाती, इसलिए और भी उच्चतर योनि में जाती है, और भी उच्चतर योनि में जाती है। और इस प्रकार चलते चलते यह जीवन का क्रम या विकास का प्रवाह मनुष्य तक आता है, और मनुष्य तक आने के बाद पूर्णता देखती है कि इस मनुष्य जन्म में मैं अपने को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाई, इसलिए मरने के बाद फिर से दूसरा मनुष्य जन्म, उसमें भी पूर्णता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाई, फिर से तीसरा मनुष्य जन्म, और इस प्रकार मनुष्य जन्म का क्रम चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन यह पूर्णता अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर देती है, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और जिस दिन पूर्णता पूरी तरह से प्रकट होती है, हम बुद्ध बनते हैं, हम कृष्ण बनते हैं, हम चैतन्य बनते हैं, हम ईसा बनते हैं, उस दिन मानो हमने इस वृत्त को पूरा कर लिया। यह जो वृत्त है, यह जो जीवन का प्रवाह जिस बिंदु से हमने शुरू किया था उसी बिंदु में आकर के हम समाप्त कर लेते हैं। तो इसलिए भारतीय तत्वज्ञानी कहता है कि देखो भाई, हमने तो जीवन का एक लक्ष्य माना है, और लक्ष्य यह है कि मनुष्य के भीतर में पूर्णता छिपी है, और वह पूर्णता वह अमीबा से मानो अपने को विकसित करते करते आई, और मनुष्य जीवन हमने प्राप्त कर लिया। विकासवादी कहता है, अच्छा यह जो तुम मनुष्य योनि मानते हो, फिर कहते हो कि एक जन्म, फिर एक जन्म, फिर एक जन्म, अच्छा यह बताओ कि यह जो फिर यह जो मनुष्य, यह जो पशु योनि है, जब तक वह मनुष्य योनि में विकास नहीं आया है, जीवन का प्रवाह नहीं आया है, और अब आ जाता है मनुष्य योनि में, तो इस दोनों में तुम अंतर किस प्रकार करते हो, यहाँ पर कैसा अंतर करते हो? इस पर तत्वज्ञानी कहता है कि अंतर तो तुम्हारी किताब में है, तुमने ही अंतर किया है, तुमने जो अंतर किया है उस अंतर को हम मानते हैं। और सचमुच में जीव शास्त्री ने ही यह अंतर कर दिया, डार्विन के समय में यह अंतर नहीं था, पर आज जीव शास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। और जीव शास्त्री जो बात कह रहा है वह बात भारत का तत्वज्ञान बहुत बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले कर चुका है। उसे अत्यंत संक्षेप में कहें, जूलियन हक्सले हैं, जूलियन हक्सले बहुत बड़े जीव शास्त्री, और उन्होंने जीव शास्त्र पर और इस पर विकासवाद पर बहुत मानो प्रबंध लिखे हैं, और एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ डार्विन, या उस ग्रंथ का यह नाम इवोल्यूशन ऑफ डार्विन। तो डार्विन महोदय की शताब्दी जब मनाई गई तो शताब्दी के उपलक्ष्य में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तीन खंडों में, तीन जिल्दों में यह किताब है। सोलटैक्स नाम के बड़े अच्छे वैज्ञानिक इसके संपादक हैं, और वहां पर जूलियन हक्सले ने कुछ लेख दिए हैं, बहुत बढ़िया लेख हैं, कि डार्विन ने विकासवाद का को जन्म दिया, और इसके बाद तो वे अधिक उसका मानो खुलासा नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पर आज जो विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई हैं, बहुत ही चमत्कारी उपलब्धियां हैं। कैसे? जैसे कहते हैं जूलियन हक्सले, कहते हैं कि यह जो विकास का क्रम है, जब तक वह मनुष्य योनि में नहीं आता तब तक मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक होता है, परंतु जिस समय वह मनुष्य में आता है तब वह मेंटल हो जाता है। अब यह बड़ी अद्भुत बात है, यह बात डार्विन के समय में नहीं थी, कि डार्विन तो यही मानते थे कि मनुष्य में भी जो विकास का क्रम है वह मैकेनिकल ही होता है, यांत्रिक होता है, इसलिए वे मनुष्य को भी विकास के हाथों में कठपुतली मानते थे कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। यह जो जीवन का क्रम है, जिस ढंग से मनुष्य को चलाएगा, मनुष्य उसके हाथों में कठपुतली है। प्रकृति मनुष्य को जैसा नचाएगी, मनुष्य को वैसा नाचना पड़ेगा। परंतु आज का जो जीव वैज्ञानिक है, वह एक भिन्न बात कहता है। वह कहता है कि मनुष्य तक जब तक प्रवाह नहीं आया है जीवन का, तब तक तो यह विकास की प्रक्रिया यांत्रिक रहती है। यांत्रिक में ये जितने भी हैं, ये मनुष्य तक जितनी भी योनियां हैं, यांत्रिक कहने से वे सब की सब कठपुतली हैं। और जब मनुष्य के भीतर में यह प्रवाह आता है, तो इट बिकम्स मेंटल, इट बिकम्स साइकोसोशल, ये उनके शब्द हैं कि वह मेंटल हो जाता है, साइकोसोशल हो जाता है। और फिर उसके बाद वे लिखते हैं, इट टेंड्स टू ग्रेटर फुलफिलमेंट, इट टेंड्स टू फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट। ये तीन बातें ध्यान करने की हैं कि जूलियन हटले लिखते हैं कि मनुष्य के भीतर में जो ही विकास का प्रवाह आता है, मनुष्य योनि में आता है, तो वह यांत्रिक से परिवर्तित होकर के मानसिक हो जाता है। और वे लिखते हैं, इट बिकम्स मेंटल, इट बिकम्स साइकोसोशल, वह मनोसामाजिक हो जाता है। अब मनोसामाजिक का अर्थ कभी बताएंगे। वह मनोसामाजिक हो जाता है, जो विकास का रूप है मनुष्य में आने के बाद वह मनोसामाजिक के रूप धारण करता है। और तीसरी बात कहते हैं, इट टेंड्स टू फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट, कि विकास के प्रवाह का एक लक्ष्य आ जाता है। और लक्ष्य क्या है? फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट का अनुवाद क्या करेंगे? पूर्णता करेंगे तो पूर्णता कर लीजिए कि पूर्णता या संपूर्णता या जैसे भी कह लीजिए कि ये जो कह रहे हैं जूलियन हटले, यदि हम अपनी भाषा में कहें तो यह कहना होगा कि वे जीवन के प्रवाह का एक लक्ष्य मानते हैं, और वह लक्ष्य है जिसे वे कहते हैं पूर्णता, और अधिक मात्रा में पूर्णता। अब पूर्णता की उनकी व्याख्या क्या है, तो यह तो समझाना बड़ा कठिन है मानो इस भाषण में, परंतु हम स्वामी विवेकानंद की जो कल्पना पूर्णता के संबंध में है उसको यदि रख दें, तो मैं समझता हूं दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात का उद्धरण मैंने पिछली बार दिया था, तो अभी एक संगति देने के ख्याल से उसका उल्लेख फिर से कर दूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइन विदिन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बस इन्होंने इतनी बात कही कि प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, या प्रत्येक जीव के भीतर में पूर्णता छिपी हुई है। इस छिपी हुई पूर्णता को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। अब इसे किसी भी प्रकार करो, कैसे करो? बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या जो अंतर प्रकृति है और बाह्य प्रकृति है, इन दोनों प्रकृतियों पर नियमन प्राप्त करके इस पूर्णता को प्रकट कर लो और मुक्त हो जाओ। यही सब धर्मों का सार है, यह स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अब यह जो पूर्णता की बात है और इन्होंने जो पूर्णता की बात कही है, अब दोनों का आप तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए, तो दोनों की जो तुलना, जो पूर्णता की धारणा है, धारणा में अंतर है, पर हम जूलियन हटले की बात को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद के कथन की पृष्ठभूमि में। तो यह हमने माना है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने यह कहा था, भारतीय तत्वज्ञान में यह कहा गया है कि यह जो मनुष्य योनि है, यह केवल कर्म योनि है। एकमात्र यही ऐसी योनि है जहां पर हम कर्म करते हैं, बाकी जो योनियां हैं वे भोग योनियां हैं। पशु भी कर्म करते हैं, परंतु पशु कर्म करते हैं ऐसा नहीं कहा जाता। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वहां पर विकास यांत्रिक है, परंतु मनुष्य के जीवन में आकर के विकास मानसिक हो जाता है, मनोसामाजिक हो जाता है, इनकी भाषा में, जूलियन हटले की भाषा में, और हम कहेंगे वेदांत की भाषा में कि मनुष्य जीवन में ही ये सारे के सारे कर्म होते हैं जिनके फल चिपकते हैं। पशु योनि तक के कर्म या मनुष्येतर योनियों तक के कर्म चिपकते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर कर्तापन नहीं है, यहां पर मनुष्य में कर्तापन का बोध है। एक और बात कह दें, जैसे एक साइंटिस्ट हो गए, बहुत बड़े पैलिंथोलॉजिस्ट थे, पियरे केलाद शाजन, उन्होंने कई किताबें लिखी, उनकी दो किताबें बड़ी प्रसिद्ध हुई, एक पुस्तक का नाम है द फिनोमेनॉन ऑफ मैन और दूसरे का नाम है द फ्यूचर ऑफ मैन। ये दोनों किताबें लाइब्रेरी में हैं। तो द फिनोमेनॉन ऑफ मैन में उन्होंने बड़ा सुंदर मनुष्य का विश्लेषण किया। मनुष्य को उन्होंने चीरा फाड़ा। वे डॉक्टर भी थे, पेशे से वे सर्जन थे। तो उन्होंने यह जानना चाहा कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। उन्होंने सब प्रकार से देखा, हड्डी देखा, चमड़ी देखी, रक्त देखा। तो पशु के रक्त में, पशु की हड्डी में, पशु की चमड़ी में और मनुष्य के रक्त में, मनुष्य की चमड़ी में, मनुष्य की हड्डी में उन्होंने कोई विशेष फर्क नहीं देखा। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का, बनावट एक प्रकार की, या उन्होंने किसी प्रकार का फर्क नहीं देखा। तो वे यह कह रहे कि आखिर पशु और मनुष्य में अंतर कहां पर होता है। फिर इसके बाद उन्होंने मस्तिष्क का, भेजे का विश्लेषण किया। भेजे का देखा, अच्छी तरह से देखा। उन्होंने देखा कि भेजे में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, पर हां उन्होंने यह देखा कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ सेल्स ऐसे हैं, सेल कहते हैं जीवाणु कोष को, मानो अब सेल ऐसा जीव का, माने जीवन का सबसे छोटा कण, इसको मानिए जीवन की सबसे छोटी इकाई, इसको जीवाणु कोष कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। सबसे छोटी जीवन की इकाई जो देखी जा सकती हो उसको सेल कहते हैं, और इस सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर ऐसा हुआ, जब वे विश्लेषण कर रहे थे तो उन्होंने पाया, विश्लेषण करते करते, कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सक्रिय हैं अधिक, जो सेल्स वहां पर पशु के भेजे में सक्रिय नहीं है। और इसके लिए बड़ा अंतर उन्होंने देख लिया। क्या अंतर देख लिया? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। आप स्वभाव से यह कहेंगे कि पशु में बुद्धि नहीं होती, मनुष्य में बुद्धि होती है। पशु कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करता, मनुष्य बुद्धि का उपयोग करता है। ये एक सामान्य उत्तर है। पर मैं पूछता हूं, क्या पशु में बुद्धि नहीं होती? जैसे मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, क्या पशु उसी प्रकार अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता? आप देखेंगे करता है। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि जैसे बिल्ली है, आप कितना भी छिपा करके दूध रखिए, पीना जानती है, बुद्धि का उपयोग करती है, किसी न किसी प्रकार वह जान लेगी कहां पर दूध रखा है, खाने की चीज कहां पर रखी है। माने पशु भी अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। मैं एक उदाहरण बहुत बार देता हूं। जब यह आश्रम बन रहा था, यहां पर कोने में एक गेट हम लोगों ने हाथ से बनाया था। तब तो प्रारंभ के दिन थे, तो स्वाभाविक टीन लेकर के, लकड़ी के बत्ते लेकर के हम लोगों ने खीले लेकर के ठोका था और दरवाजा बना दिया था। कुछ यहां पर बगीचा लगाया था और वहां पर एक बोर्ड टांग दिया था, कृपा करके दरवाजा खुला न रखें। परंतु आप लोगों के यहां अगर ऐसे दरवाजे और बोर्ड हों तो आप जान सकते हैं कि उस लिखावट का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता आने वाले लोगों पर। वो कृपा नहीं करते। हम जो लिख देते हैं कि कृपा करके दरवाजा बंद रखें, खुला न रखें, तो वो कृपा नहीं करते हैं, दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और गाय बकरी आकर के आपका सारा बगीचा चर लेते हैं। आपको बड़ी परेशानी होती है, हमें भी परेशानी हुई। हमने देखा क्या किया जाए, तो हम लोगों ने एक विकेट गेट बनाया, छोटा सा, उसको भी टीन का बनाया, पर उसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया कि जैसे बाहर से कोई आया, तो बाहर से आए तो अपनी तरफ से खींचना पड़ेगा खोलने के लिए, और अंदर चला जाए तो मत बंद करे, पर वह अपने वजन से बंद हो जाएगा। ऐसा हमने बना दिया विकेट गेट। जिस दिन विकेट गेट बना तो हमको ऐसा लगा वाह कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली है। अब तो प्रारंभ के दिन थे, तो वह विकेट गेट बना तो हम ही लोगों ने कितनी बार प्रयोग किया, साइकिल लेकर के प्रयोग किया। तो एक आदमी साइकिल में जैसे आया तो उसको उतरना पड़ता था गेट में, उतरेगा और धीरे से एक हाथ से फाटक खोलेगा, ऐसा जाएगा और छोड़ देगा, तो गेट अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अब तो राहत मिल गई, और सचमुच राहत मिली। करीब 5-6 महीने तक राहत मिली, न गाय आए न बकरी आए, कोई नहीं, और हमारा बगीचा बढ़िया लहलहाने लगा। और अचानक हमने देखा कि हमारे हर्ष पर एक तुषारपात हो गया। हमने देखा कि एक लाल रंग की गाय थी, वह आ जाती थी, चढ़ने लगती थी। अब हमको बड़ा गुस्सा आया कि लाल गाय कैसे आ जाती है, दरवाजा तो बंद है। तो किसी ने कहा कि हो सकता है ये गाय का मालिक शायद यहीं कहीं होगा। हम लोग ऐसे हैं ना, हम लोग ऐसे व्यावसायिक बुद्धि में बहुत तगड़े हैं। मैंने ऐसे हैं कि गाय तो रखते हैं, दुहने के समय गाय को घर में बुला लेते हैं और बाकी खाने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके घर का भी अनाज पाओ जाकर के खा लो। इसमें हम लोग बहुत प्रवीण हैं। आप देखेंगे जितने छुट्टे गाय हैं ये सब इसी प्रकार के हैं कि ठीक शाम के समय जब दुहने का होगा तो थोड़ा सा दाना भूसा तैयार रहेगा, दाना भूसा खाने के लोट में चली जाएगी, उसको खिलाते हुए थोड़ा दूध दूह लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ दिया कि दूसरे घर का अनाज खाओ, दूसरे घर की साग भाजी खाओ, इसके लिए छोड़ देते हैं। तो यही अब लाल गाय आती थी, हमें तो बहुत मुश्किल हुई इसको कैसे क्या किया जाए।
समझ में आए। फिर हमने देखा, एक दिन देखा कि अच्छा क्या कोई आकर के सचमुच में गेट खोल करके उसके भीतर घुसा देता है क्या। उसे हमने निकाल दिया, गाय को खदेड़ दिया। फिर 10 मिनट में गाय आकर के हाजिर। हमें विचित्र सा लगे, क्या बात है। तो कभी कभी ऐसा होने लगा कि गाय के रूप में कोई भिन्न योनि तो नहीं है कि भाई ये कैसा करके आ रही है कि हम उसे निकाल देते और गाय आ जाती है। हमने कहा कि अच्छा छिप करके देखें क्या वो करती है। छिपे यहाँ पर नीचे में, देख रहे हैं, गाय को हकाल दिया, गाय तो दूर निकली गेट से और चली गई वहां पर, और थोड़ी दूर जाकर के वो फिर खड़ी हो गई, फिर राइट अबाउट टर्न हो गई, गेट की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, देखने लगी। और हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति आया पैदल और अंदर चला गया ऐसा करके तो गाय तो नहीं आई, पर जिस समय एक साइकिल वाला उधर आया तो गाय एकदम बहुत जल्दी जल्दी आई। अब साइकिल वाला उतरा, अब उसने एक हाथ से दरवाजा खोला, साइकिल उसने अंदर की ओर ऐसा ले जाने के लिए किया, तो ठीक साइकिल के पिछले चक्के के साथ उस गाय ने अपना सिर ऐसा जोड़ दिया, अताची वह दरवाजा बंद न हो, और उस दिशा को भीतर आ गई। अब हमें मालूम पड़ा कि गाय भीतर कैसे आती थी। अब अगर कहें कि पशुओं में बुद्धि नहीं होती है तब तो बड़ी विचित्र बात है, कि इसका मतलब यह है कि पशुओं में बुद्धि होती है और पशु अपनी बुद्धि का उपयोग करना जानते हैं। अपनी अंतर कहां पर है कि अगर पशु भी अपनी बुद्धि का उपयोग और मनुष्य भी अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो फिर अंतर कहां पर है पशु और मनुष्य में। बस इसी की जांच कर रहे थे पीरियड ने टेला देशाजन, और उन्होंने अपनी जांच को बड़ी ही सुंदर, जिसे कहेंगे साहित्यिक भाषा क्या कहें, अत्यंत सुंदर भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। वह जब उन्होंने देखा कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अधिक सक्रिय हैं, तो फिर उसके बाद में लिखते हैं ये ज्ञान तो दोनों को होता है, पशु को भी ज्ञान होता है मनुष्य को भी ज्ञान होता है। जैसे हम सोचते थे ना कि पशु को बोध नहीं होता, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, यह बात नहीं है। तो अंतर कहां पर है। एन एनिमल नोज एंड ए मैन नोज, वे लिख रहे हैं, एन एनिमल नोज एंड ए मैन नोज, बट एन एनिमल डज नॉट नो दैट ही नोज व्हाइल ए मैन नोज दैट ही नोज। यह दोनों का अंतर है। अब बड़ा सरल है, वे कहते हैं कि पशु को पशु भी जानता है और मनुष्य भी जानता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है, जबकि मनुष्य यह जानता है कि वह जानता है। बात गोल गोल है पर बहुत सरल है। पर कहते हैं कि पशु भी जानता है और मनुष्य भी जानता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है। माने पशु को ज्ञान तो होता है पर पशु को अपने ज्ञान का बोध नहीं होता कि मैं जान रहा हूं, और मनुष्य को ज्ञान होता है, मनुष्य भी जानता है, पर मनुष्य यह जानता है कि वह जानता है, मनुष्य को अपने ज्ञान का बोध होता है। तो शादीन वहां पर लिखते हैं कि इसमें मनुष्य में ऐसी मेंटल फैकल्टीज है कि वह लिखते हैं कि यह अपनी समस्त मानसिक वृत्तियों को संबद्ध कर सकता है, यह सब मन संगठित कर सकता है, और संगठित करने के बाद वह अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो मेंटल फैकल्टी मुझे मिली है, मनोवृत्ति मुझे मिली है, इस सब का उपयोग काहे के लिए करूं, किसके लिए मैं करूं। तो अंत में वे मानो सार लिखते हुए कहते हैं कि पशु और मनुष्य में अंतर यह है कि पशु कभी भी अपने आप से यह नहीं पूछता कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, जबकि मनुष्य कभी न कभी अपने आप से जरूर पूछता है कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, कि मुझे ये जो बुद्धि वृत्तियां मिली हैं किस लिए मिली हैं, इनका जो मैं उपयोग कर रहा हूं। जैसे मनुष्य को संबोध होता है कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, वृत्तियों का उपयोग कर रहा हूं, पशु को यह बोध नहीं होता। यह दोनों का अंतर है, और क्योंकि मनुष्य इस प्रकार का बोध करने में समर्थ है इसलिए क्या होता है, इसलिए जैसे जूलियन हक्सले लिखते हैं, बड़ी अद्भुत बात वो लिखते हैं, वे कहते हैं कि ही कैन कोऑर्डिनेट एंड मैनिपुलेट हिज मेंटल फैकल्टीज। यह मनुष्य अपनी मेंटल फैकल्टीज को कोऑर्डिनेट सुसंबद्ध और मैनिपुलेट कर सकता है, और मैनिपुलेट करके क्या कर सकता है, वह कहते हैं ही कैन एक्सेलरेट द पेस ऑफ इवोल्यूशन। यह जो इवोल्यूशन है, विकास की गति है, उसको वह एक्सेलरेट कर सकता है, उसको तीव्र कर सकता है। सामान्य भाषा में कहें कि जो विकास 200 वर्ष में साधित होता सामान्य गति से चलते हुए, तो वह विकास 20 वर्ष में साधित किया जा सकता है, यदि हम अपनी मेंटल फैकल्टीज को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करें और मैनिपुलेट करें तो हम अपनी विकास की गति को तेज बना सकते हैं, ये हस्तले कहते हैं। अब इस पर तो हमारा सारा शास्त्र निर्भर करता है। हम जो कहते हैं ना कि देखो भाई, यह जो इतना सब कहा गया लक्ष्य के संबंध में कहा गया, मनुष्य पशु से इस बात से भिन्न है, जीवन का प्रयोजन पूछता है, और जीवन का प्रयोजन क्या है, अपने जीवन में यह जो पूर्णता छिपी है उसको व्यक्त कर देना। तो इस पर कई फिर आते हैं, प्रश्न आते हैं, प्रश्न ऐसे आते हैं कि यह जो पूर्णता प्रकट करता है,
ठीक है,
आपने पूर्णता प्रकट करने की बात कही, तो ये जो जीवन इतने चले, आप कहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, तो क्या एक बार मनुष्य बनने के बाद उसका जन्म फिर से मनुष्यतर योनि में नहीं होता? जैसे हमारे यहाँ उदाहरण है, राजा भरत हरिण की योनि को प्राप्त हुए, तो यह जो बात है तो यह कपोल कल्पित है या यह बात विज्ञान द्वारा सम्मत है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है?
तत्व ज्ञानी कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी मैं उत्तर दूंगा।
और प्रश्न तो कहता है, और मैं ये प्रश्न करूंगा कि जब आप कहते हैं ठीक है कि अनुभव से जीवन का प्रवाह निकला और यह प्रवाह जा रहा है पूर्णता की ओर, आप कहते हैं जिस बिंदु से प्रवाह निकला है फिर वह वृत्त को पूर्ण कर लेता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इसी बिंदु से निकल करके इसी बिंदु में आना हो तो लाख लाख वर्ष तक जो जीवन का प्रवाह चलता है इसमें क्या तात्पर्य है? अगर हम इतना सब चल करके लाख लाख करोड़ करोड़ वर्ष चल करके उसी बिंदु पर वापस लौट आए तो चलने का क्या मतलब होता है? तो तत्वज्ञानी कहता है वह भी बात मैं समझा दूंगा, तुम्हारा यह भी प्रश्न ठीक है कि कैसे वह चलता है और कहां पर वह पहुंचता है, तो ठीक उसी बिंदु पर जो तुम पहुंचता है कहते हो तो ठीक वही बिंदु नहीं है। जैसे वृत्त में जो दो बिंदु होते हैं वे कॉन्टिग्यूस होते हैं, वे आइडेंटिकल नहीं होते, वे जो दो बिंदु, जैसे वृत्त में दो बिंदु की कल्पना करते हैं, यह बिंदुओं से बना हुआ वृत्त है, तो एक बिंदु से प्रारंभ हुआ और दूसरे बिंदु में जाकर के पहुंच गए, तो ये दोनों बिंदु आइडेंटिकल नहीं है, ये कंटिन्यूअस हैं, ये परस्पर एक दूसरे के आजू बाजू में रहने वाले बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं में बहुत भिन्नता है, यह कहता है तत्वज्ञानी। यह भी बात मैं तुम्हें समझाऊंगा। और क्या प्रश्न है? अरे प्रश्न यह है कि यह तो ठीक है, आपने यह भी कहा और यह सारी बात भी समझा दी, पर मुझे आप यह बताइए कि आपने कहा कि जीवन का प्रवाह निकला, बहता रहा बहता रहा बहता रहा, और आप कहते हैं कि यह जीवन का प्रवाह परिपूर्णता की ओर ठेल रहा है, आपने कहा प्रकृति की आपूर्ण क्रिया के द्वारा, तो यह सारी बात आपने कही, इसका मतलब है कि जितने ये सारे जीव हैं ये सब एक न एक दिन उस पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे? कहां पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे? तब फिर आप जो साधना के लिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति साधना करे आकर के ऐसा करे, तो फिर यह क्यों करते हैं? जब यह प्रकृति के गुण में ही निहित है कि सारे के सारे लोग एक न एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो ही जाएंगे, तो फिर यह सब साधना की आवश्यकता क्या है? यह भी मेरा प्रश्न है। मैं कहा उसको भी समझा देंगे, उसका भी उत्तर यह सत्व ज्ञान देता है कि साधना करने से क्या होता है, एक उत्तर इसी में समाहित है। जैसे जूलियन हक्सले ने कहा कि 200 वर्ष में जो कुछ होता वह 20 वर्ष में साधित हो सकता है, तो यह जैसे उन्होंने कहा तो वह साधना की दृष्टि है, साधना की दृष्टि से हम इस बात को अपना सकते हैं। पर इसका खुलासा ये जो प्रश्न है, कुछ ये जो प्रश्न है जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो इनका खुलासा करेंगे। अच्छा, और एक प्रश्न जो इस संदर्भ में है कि मनुष्य जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो मृत्यु है कि मनुष्य जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वस्तुतः क्या होता है? कि उस समय जो जाता जाता है, एक प्रश्न उनका ठीक है, यह भी प्रश्न ठीक है, और यह जो मनुष्य कर्म करता है तो उसका संस्कार जो चिपकता है तो कैसे चिपकता है, इसका लेखन या जो इसका अंकन कौन करता है कि कैसे कोई अंकित करके रख ले हिसाब इतना हो गया, या कैसे मालूम पड़े, तो कैसे मालूम पड़ा कि इतने सारे के सारे हिसाब हैं, इस मनुष्य ने यह कर्म किया है? क्योंकि हम तो अब जो कर्म करते हैं हम स्वयं भूल जाते हैं, परंतु आप कहते हैं कि उन कर्मों का फल कहीं पर वह संचित रहता है, तो वह जो संचित रहता है तो संचित रहने की प्रक्रिया क्या है, तो वह भी बता देंगे। अच्छा, और यह बता दीजिएगा कि जब इतना आप बता रहे हैं तो जिस समय आप कहते हैं कि वह जो एक बिंदु से निकल करके और जिस समय उस बिंदु तक आकर के वृत्त को पूर्ण कर लिया और पूर्ण मानव मनुष्य बन गया, तो और उसके बाद आप कहते हैं कि जीवन का आवागमन जो है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि मनुष्य के मरने के बाद उसके भीतर का लिंग शरीर निकल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो लिंग शरीर है यह मनुष्य के साथ हरदम से है, शुरू से है? हाँ, शुरू से है। कहां से है? क्या अमीबा से है? हाँ, अमीबा से है।
अमीबा से जब से अमीबा के भीतर में वह आया है, उस अमीबा के भीतर में वह लिंग शरीर है और उसके साथ साथ वह जो संबंध है वह चला चल रहा है लिंग शरीर के साथ ही। अच्छा, लिंग शरीर का संबंध अमीबा से है तो फिर जब पूर्णता की स्थिति आती है तब क्या होता है? तब हम कहते हैं लिंग शरीर जल जाता है। अच्छा, जल जाता है, कैसे वह जल जाता है? उसको भी बता देंगे कैसे वह जल जाता है। तो कहा, अच्छा आप बुरा मत मानिए, एक प्रश्न मैं और करूंगा। तो कहो कि अच्छा, ये जो आपने कहा कि इतने इतने करोड़ करोड़ जीव हैं, हाँ हैं। अच्छा, करोड़ करोड़ जीव अलग अलग दशा में दिखाई देते हैं, हाँ हैं। तो अलग अलग दशा क्यों है उनकी? ये जो भिन्न भिन्न है, यह दशा उनकी क्यों भिन्न भिन्न है? वह भी बताए। अच्छा आप बताइए कि इतनी जो भिन्न भिन्न दशा आप कहते हैं तो क्या इसका कारण यह है कि ये जो अमीबा है तो उतने सब अमीबा होंगे? हमने कहा उतने अमीबा होंगे। अच्छा, अगर संसार में समझिए भिन्न भिन्न स्पीसीज का मिला करके, मनुष्य स्पीसीज का मिला करके, अगर समझिए कि एक मोटा सा 200 करोड़ अगर योनियां हो, इसका मतलब कि 200 करोड़ अमीबा से सारे निकले? कहा हाथ निकले हैं 200 करोड़ अमीबा से। और ये अंतर क्यों दिखाई देते हैं? हमने कहा अंतर इसलिए दिखाई देते हैं कि अमीबा मानो ऐसे फेंके जा रहे हैं, ये इस प्रकार से मानो फेंके जा रहे हैं। अब कुछ अमीबा पहले आ गए, अब उनका विकास क्रम जारी है और कुछ कई लाख साल बाद में आ रहे हैं। यह जो सतत चल रहा है, इस प्रकार का विकास क्रम चल रहा है। अच्छा अच्छा, अब एक प्रश्न ख्याल में आया, तो आप जो कहते हैं इतने अमीबा निकल रहे हैं और यह सब जा रहा है और आप कहते हैं सारी की सारी पूर्णता एक एक अमीबा के भीतर में छिप गई है, तो यह जो पूर्णता जाकर के अमीबा में छिपी वह क्यों छिपी और कैसे छिपी और कब छिपी, यह भी आप बताएंगे? हाँ, यह भी बता दें। मछलियों को खा लेती है, बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खा लेते हैं। तो कहा कि जो यह जो हम मानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि यह जो सर्वाइवल माने जो बचा रहेगा, कौन? फिटेस्ट, जो योग्यतम है, जो बलिष्ठ है, वही व्यक्ति बचा रहेगा। और दूसरा कारण नेचुरल सिलेक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन, प्राकृतिक निर्वाचन या यौन निर्वाचन, ये दो कारण मैं मानता हूं। वेदांतवादी ने कहा कि जरा इन कारणों को समझा भी दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये दो कारण मानते हैं तो ये दो कारण क्या हैं? आप जो बताते हैं तो कहा कि देखो बात यह है कि तुम जीवन में देखते हो कि जो बलवान आदमी होता है वह दुर्बल को हरा करके स्वयं विद्यमान रहता है, यह तो जीवन में क्रम देखते हो। जैसा हमने कहा बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, तो इस संसार में ऐसा सर्वत्र देखा जाता है कि जो व्यक्ति बलिष्ठ है, अधिक ताकत वाला है, वह कम ताकत वाले को दबा देता है। तब क्या होता है जानते हो? यह जो एक योनि में कोई प्राणी आया तो यह जो योनि वाला है, नीचे की योनि वाला, नीचे की स्पीसीज वाला, तो वह सोचता है कि ऊपर की स्पीसीज वाला मुझ पर अत्याचार करेगा, वह मुझसे ज्यादा बली है। तो यह जो नीचे की योनि वाला प्राणी है उसके मन में इच्छा होती है कि मैं ऊपर की स्पीसीज वाली योनि में चला जाऊं, ऊपर की योनि में चला जाऊं, ताकि ऊपर की योनि वाला मुझ पर अत्याचार न कर सके। उसके भीतर में यह जो अभिलाषा जगी या जो इच्छा जगी कि मैं उच्चतर योनि में जाऊं ताकि उच्चतर योनि वाला मुझ पर आक्रमण न कर सके, या इच्छा ही उसे उच्चतर योनि में ले जाती है, इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। या भीतर में एक प्रेरणा, मैं उच्चतर योनि में जाने की इच्छा करता हूं और इसलिए वह उच्चतर योनि में चला जाता है। यह जो जीवन का प्रवाह है निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में क्यों जाता है? इसलिए कि वह जो निम्नतर योनि में प्राणी है वह बचे रहने की इच्छा करता है, वह नहीं चाहता कि उच्चतर योनि वाला प्राणी उसको हरा दे, उसको दबा दे, उसका नाश कर दे, इसलिए वह उच्चतर योनि में जाना चाहता है। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और दूसरा उन्होंने कहा कि सेक्सुअल और नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक निर्वाचन या यौन निर्वाचन, क्या मतलब? कि जैसे यह निम्नतर योनि का जो जीव है वह उच्चतर योनि के या तो मादा के साथ, निम्नतर योनि का यदि मादा है तो उच्चतर योनि के नर के साथ संयोग करना चाहती है, और यदि निम्नतर योनि का या नर है उच्चतर योनि की मादा के साथ संसर्ग स्थापित करना चाहता है, इस इच्छा के कारण यह जो जीवन का प्रवाह है निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में जाता है। तब ये दो कारण हम मानते हैं, एवरेशंस को छोड़ दें, पर ये हम कारण मानते हैं, यह विकासवादी ने कहा। ठीक है, वेदांती ने कहा आपकी बात मैंने सुन ली कि आप यह मानते हैं, ये दो कारण आप जैसे मानते हैं बहुत ठीक है। तो अच्छा यह बताइए कि यह जो आपने कारण माना ठीक है, उस कारण पर हम अभी विवाद नहीं करेंगे विकासवादी जी, हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में, जो संशय हमारे मन में है उन संशयों को उपस्थित करेंगे। पर अभी आप यह तो बताइए कि आपने कहा कि यह जो है परंपरा, जीवन की परंपरा, जीवन का प्रवाह अमीबा से निकला है, आप कहते हैं यह विकास का प्रवाह अमीबा से निकला है और कई ऐसी योनियों में से होकर के गया, कि आपने कहा कि यह जो है परंपरा, जीवन की परंपरा, जीवन का प्रवाह अमीबा से निकला है, आप कहते हैं यह विकास का प्रवाह अमीबा से निकला है और कई ऐसी योनियों में से होकर के गया और मनुष्य तक पहुंचा है, आपने यह कहा? हाँ मैंने कहा। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य पाते हैं, कई मनुष्य होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, जैसे हम देखें भगवान श्री राम को देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान बुद्ध को देखें, चैतन्य को देखें, अपने जमाने में श्री राम कृष्ण को देखें, अब ये ऐसे हैं जो महापुरुष हैं जिन्होंने सचमुच अपनी क्षुद्रताओं को जीत लिया है, ऐसा लगता है कि ये मनुष्य नहीं है बल्कि मनुष्य से बहुत ऊपर उठ गए हैं, तो ये जो ऐसे दिखाई देते हैं ये किस कारण दिखाई देते हैं? ये जो निकलते हैं इस विकास के प्रवाह में ऐसे भी तो मनुष्य आते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? इनके संबंध में आप कुछ बता सकते हैं कि इस प्रकार मनुष्य मनुष्य में इतना जो भेद दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? तो विकासवादी ने कहा कि हमें तो भाई नहीं मालूम, हम यह नहीं बता सकते कि एक शंकराचार्य कैसे पैदा हो जाता है, एक बुद्ध, एक कृष्ण, एक राम कृष्ण, एक चैतन्य, एक ईसा, यह कैसे पैदा हो जाता है, यह तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा विकासवादी से फिर दूसरा प्रश्न किया वेदांती ने, अच्छा यह बताइए कि आप यह तो कहते हैं, अच्छा यह जो आपका विकास का क्रम है इसमें चैतन्य का कहां पर स्थान है? यह जो मनुष्य में चेतना आ जाती है, तो यह जो चेतना आती है तो कहां से आती है? क्या चेतना अमीबा से आती है? कहा कि नहीं, अमीबा में कोई चेतना नहीं है, चेतना अमीबा से नहीं आती, यह कॉन्शियसनेस अमीबा से नहीं निकलता, तो कहां से निकलता है? प्रश्न पूछा। विकासवादी ने कहा कि देखो जैसे कई रसायन एक साथ मिलते हैं तो एक नया तत्व पैदा हो जाता है, तो इसी प्रकार मैं समझा तो नहीं सकूंगा पर यह मैं तुमसे कहता हूं, विकासवादी वेदांतवादी से कह रहा है, यह मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो जिस समय विकास का प्रवाह चलता है अमीबा से निकल करके, तो उस प्रवाह की प्रक्रिया में कुछ रसायन ऐसे एक साथ मिल जाते हैं और एक स्थान पर आकर के चेतना प्रकट हो जाती है, तो इसका मतलब थे तो बड़ी हंसी बात ऐसे हंसी लगती थी और ऐसा लगता था कि यह क्या कहा है, 84 लाख योनि की बातें कही गई हैं, वस्तुतः यह तो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, अरे किसी ने गिना थोड़े ही है, हमारे पूर्वजों ने कहीं बैठ करके इन योनियों को गिना, कितनी प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख योनियों को कैसे करके गिना होगा, यह हम कहां करते हैं, परंतु यह उनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। आज का जो जीव शास्त्री है 128 लाख योनियां मानता है, अब कैसे उसने गवेषणा की, उसने आखिर यह जो ज्ञान प्राप्त किया तो वह कोई अध्याधुन ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उसने प्रयोग किया होगा, उसने सब स्पीसीज कलेक्ट की होंगी और संग्रह करके उनकी छानबीन की होगी, अलग अलग स्पीसी को अलग अलग किया होगा और उसके बाद उसने घोषणा की कि हाँ 128 लाख योनियां हैं। तो हमने जब 84 लाख योनियों की बात कही तो हमें हंसी आती थी, हमें ऐसा लगता था कि हमारे पूर्वज ये सब कुसंस्कार संपन्न थे और ये अंधविश्वासी थे, इनको मालूम नहीं था, पर आज जब विज्ञान कहता है 100